This recording accompanies the Language B Standard Level Examination, Paper 2, Listening Comprehension for Hindi, May 2022.
Cet enregistrement accompagne l'examen de langue B, niveau moyen, épreuve 2, compréhension orale d'Hindi, May 2022.
Esta grabación acompaña el examen de lengua B, nivel medio, prueba 2, comprensión auditiva, de Hindi, mayo 2022.
The start and end of each audio text will be indicated by this sound.
Le début et la fin de chaque texte audio seront indiqués par ce son.
El inicio y el final de cada texto de audio se indicarán con este sonido.
The end of the examination will be indicated by this sound.
La fin de l'examen sera indiquée par ce son.
El final del examen se indicará con este sonido.
पाठांश क इन प्रश्नों को पढ़ने के लिए अब आपके पास 4 मिनट हैं।
अभी आप लक्ष्मी और यात्रा अनुभवी विकास के बीच में एक संवाद सुनेंगे।
नमस्ते विकास जी, मैं लक्ष्मी बोल रही हूँ।
नमस्ते, कैसी हो लक्ष्मी? बोलो, कैसे याद किया?
जी, आपने तो अनेक यात्राएं की हैं। इस विषय पर मुझे आपकी सलाह चाहिए।
कैसी सलाह चाहिए? पूछो।
मैं ग्रीष्मावकाश में किसी जगह की यात्रा करना चाह रही थी।
अच्छा, पहली बार यात्रा कर रही हो? तब तो तुम्हें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा।
जी, आप समझाएं कि मुझे कैसी तैयारी करनी होगी।
अच्छा ठीक है, सुनो, सबसे पहले तुम किस जगह की यात्रा करना चाहती हो और वहाँ क्या क्या देखना चाहती हो यह निश्चित कर लो। इससे यात्रा आसान एवं नियोजित हो जाती है। दूसरी बात यह है, तुम यात्रा अकेले या परिवार के साथ करना चाहती हो यह तय कर लो।
मैं अपनी सहेलियों के साथ जाना चाहती हूँ, क्योंकि परिवार में सब अपनी जिम्मेदारियों के कारण व्यस्त हैं।
ये बढ़िया है।
जी हाँ, इनके साथ बहुत आनंद आता है। मुझे कुछ और बातें बताएं।
तीसरी प्रमुख बात है तुम्हारा आने वाला खर्चा। यात्रा स्थल तक कैसे पहुँचोगी, होटल, खाना पीना, दर्शनीय स्थल पर कुल मिलाकर कितना खर्च होगा?
ओह, मैंने तो इन बातों पर ध्यान ही नहीं दिया था, केवल हवाई यात्रा और होटल का सोचा था।
अब सबसे जरूरी बात, अपने पैसों को कैसे संभालोगी, क्रेडिट कार्ड या धनराशि से? और हाँ, सामान बांधते समय स्थान के अनुरूप सोच समझ कर करना।
आपसे बात कर मैंने बहुत कुछ सीख लिया है। यात्रा का स्थान निश्चित कर आपसे फिर सलाह लूंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
इस रिकॉर्डिंग को दूसरी और अंतिम बार सुनने से पहले अब आपके पास 2 मिनट हैं।
नमस्ते विकास जी, मैं लक्ष्मी बोल रही हूँ।
नमस्ते, कैसी हो लक्ष्मी? बोलो, कैसे याद किया?
जी, आपने तो अनेक यात्राएं की हैं। इस विषय पर मुझे आपकी सलाह चाहिए।
कैसी सलाह चाहिए? पूछो।
मैं ग्रीष्मावकाश में किसी जगह की यात्रा करना चाह रही थी।
अच्छा, पहली बार यात्रा कर रही हो तब तो तुम्हें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा।
जी, आप समझाएं कि मुझे कैसी तैयारी करनी होगी।
अच्छा ठीक है, सुनो, सबसे पहले तुम किस जगह की यात्रा करना चाहती हो और वहाँ क्या क्या देखना चाहती हो यह निश्चित कर लो, इससे यात्रा आसान एवं नियोजित हो जाती है। दूसरी बात यह है, तुम यात्रा अकेले या परिवार के साथ करना चाहती हो यह तय कर लो।
मैं अपनी सहेलियों के साथ जाना चाहती हूँ क्योंकि परिवार में सब अपनी जिम्मेदारियों के कारण व्यस्त हैं।
ये बढ़िया है।
जी हाँ, इनके साथ बहुत आनंद आता है। मुझे कुछ और बातें बताएं।
तीसरी प्रमुख बात है तुम्हारा आने वाला खर्चा। यात्रा स्थल तक कैसे पहुँचोगी, होटल, खाना पीना, दर्शनीय स्थल पर कुल मिलाकर कितना खर्च होगा।
ओह, मैंने तो इन बातों पर ध्यान ही नहीं दिया था, केवल हवाई यात्रा और होटल का सोचा था।
अब सबसे जरूरी बात, अपने पैसों को कैसे संभालोगी, क्रेडिट कार्ड या धनराशि से? और हाँ, सामान बांधते समय स्थान के अनुरूप सोच समझ कर करना।
आपसे बात कर मैंने बहुत कुछ सीख लिया है। यात्रा का स्थान निश्चित कर आपसे फिर सलाह लूंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अब आपके पास 2 मिनट हैं। पाठांश ख। इन प्रश्नों को पढ़ने के लिए अब आपके पास 4 मिनट हैं।
अभी आप एक समाज सेविका निर्मला देवी, जो समाज के लिए कई हितकारी योजनाएं चलाती हैं, के साथ एक रेडियो वार्ता सुनेंगे।
नमस्कार, आज हमारे कार्यक्रम जागृत भारत में हमारे साथ श्रीमती निर्मला देवी हैं। आप समाज के लिए कई हितकारी योजनाएं चला रही हैं, जैसे गरीब बच्चों की शिक्षा और नारी सशक्तिकरण। आपका बहुत स्वागत है।
मैं तो एक साधारण समाज सेविका हूँ। आपने सम्मान देकर मुझे यहाँ बुलाया, धन्यवाद।
निर्मला जी, हम कभी कभी जिम्मेदारियों से तनावग्रस्त हो जाते हैं, आप इन्हें कैसे संभालती हैं?
इसे निभाना आसान नहीं है। ढेर सारा आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प इसकी कुंजी है। हमें कभी डरकर अपने इरादे से मुखरना नहीं चाहिए।
बहुत खूब। आपकी संस्था असहाय महिलाओं को जीविका प्रदान करती हैं और नारी सशक्तिकरण पर आपके विचार अलग हैं। इसके बारे में कुछ बताइए।
मेरा मानना है कि जब देश के मानस पटल पर नारी अपनी गरिमा गौरव का परिचय देगी, तभी राष्ट्र निर्माण संभव है। सुदृढ़ नारी से पूरा समाज शिक्षित होता है। अपने प्राप्त कौशल और काबिलियत के सहारे ये चुनौती का सामना कर सकती है। मेरा उद्देश्य इन्हें समाज में एक सम्मानजनक स्थान दिलाना है।
निर्मला जी, आपकी संस्था अबला महिलाओं को विविध रूप से प्रशिक्षित करती हैं, जैसे सिलाई, कढ़ाई, बुनाई की शिक्षा आदि देकर। क्या आपके सभी समाज उपयोगी कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण से जुड़े हैं?
जी हाँ, ऐसा कह सकते हैं। दरअसल अबला नारी को आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने का अवसर ही नहीं दिया जाता है, जिससे वह असहाय महसूस करती है। हम इन्हें प्रशिक्षित कर इनका नया भविष्य बनाते हैं। जब वो पूरे आत्मविश्वास के साथ समाज की समस्याओं को सुलझा पाएंगी, वो सशक्त होती जाएंगी।
आपके विचारों से मैं प्रेरित हूँ, पर आज हमारे श्रोता भी आपसे प्रेरणा पा रहे होंगे। निर्मला जी, हम यह दुआ करते हैं कि आप सदैव लोगों की प्रेरणा स्रोत बनी रहें। अपना बहुमूल्य समय निकालने के लिए बहुत धन्यवाद।
नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद।
इस रिकॉर्डिंग को दूसरी और अंतिम बार सुनने से पहले अब आपके पास 2 मिनट हैं।
नमस्कार। आज हमारे कार्यक्रम जागृत भारत में हमारे साथ श्रीमती निर्मला देवी हैं। आप समाज के लिए कई हितकारी योजनाएं चला रही हैं, जैसे गरीब बच्चों की शिक्षा और नारी सशक्तिकरण। आपका बहुत स्वागत है।
मैं तो एक साधारण समाज सेविका हूँ। आपने सम्मान देकर मुझे यहाँ बुलाया, धन्यवाद।
निर्मला जी, हम कभी कभी जिम्मेदारियों से तनावग्रस्त हो जाते हैं, आप इन्हें कैसे संभालती हैं?
इसे निभाना आसान नहीं है। ढेर सारा आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प इसकी कुंजी है। हमें कभी डरकर अपने इरादे से मुखरना नहीं चाहिए।
बहुत खूब। आपकी संस्था असहाय महिलाओं को जीविका प्रदान करती हैं और नारी सशक्तिकरण पर आपके विचार अलग हैं। इसके बारे में कुछ बताइए।
मेरा मानना है कि जब देश के मानस पटल पर नारी अपनी गरिमा गौरव का परिचय देगी, तभी राष्ट्र निर्माण संभव है। सुदृढ़ नारी से पूरा समाज शिक्षित होता है। अपने प्राप्त कौशल और काबिलियत के सहारे ये चुनौती का सामना कर सकती है। मेरा उद्देश्य इन्हें समाज में एक सम्मानजनक स्थान दिलाना है।
निर्मला जी, आपकी संस्था अबला महिलाओं को विविध रूप से प्रशिक्षित करती हैं, जैसे सिलाई कढ़ाई बुनाई की शिक्षा आदि देकर। क्या आपके सभी समाज उपयोगी कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण से जुड़े हैं?
जी हाँ, ऐसा कह सकते हैं। दरअसल अबला नारी को आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने का अवसर ही नहीं दिया जाता है, जिससे वह असहाय महसूस करती है। हम इन्हें प्रशिक्षित कर इनका नया भविष्य बनाते हैं। जब वो पूरे आत्मविश्वास के साथ समाज की समस्याओं को सुलझा पाएंगी, वो सशक्त होती जाएंगी।
आपके विचारों से मैं प्रेरित हूँ, पर आज हमारे श्रोता भी आपसे प्रेरणा पा रहे होंगे। निर्मला जी, हम यह दुआ करते हैं कि आप सदैव लोगों की प्रेरणा स्रोत बनी रहें। अपना बहुमूल्य समय निकालने के लिए बहुत धन्यवाद।
नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद।
इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अब आपके पास 2 मिनट हैं। पाठांश ग। इन प्रश्नों को पढ़ने के लिए अब आपके पास 4 मिनट हैं।
अब आप विद्यालय छात्र प्रतिनिधि द्वारा भाषण सुनेंगे। इसमें वह अपने ग्रामीण एवं शहरी जीवन के अनुभव को बांट उनकी तुलना करता है।
प्यारे ग्रामवासियों, नमस्कार। मेरा नाम अंकित शर्मा है। मैं नवोदय विद्यालय का छात्र कप्तान हूँ। आज मैं यहाँ आप सबका आभार प्रकट करने के लिए उपस्थित हूँ। आपके परस्पर प्रेम और सहयोग से हमारा मन गदगद हुआ और हम ग्रामीण जीवन के प्रति जागरूक हुए। नैसर्गिक सौंदर्य में लिपटा गांव का शांत स्वच्छ वातावरण एवं सीधा सादा जीवन सचमुच आनंददायी है। हम शहरी कभी कभी सप्ताहांत शहर से दूर निकलकर ऐसा आनंद पाते हैं। यहाँ रोज सुबह की स्वच्छ हवा में व्यायाम, खेत की तरोताजा सब्जियों से बना शुद्ध सात्विक पौष्टिक एवं स्वादिष्ट भोजन शहरों में पाना दुर्लभ है, क्योंकि वहाँ की आपाधापी जीवन में खाने की फुर्सत ही कहाँ है। शहरी निरंतर भाग दौड़ में रहते हैं और गाँव में लोग रात जल्दी सोकर सुबह जल्दी उठते हैं। तालाबों और नहरों से बहती सुगंधित हवा, चिड़ियों की चहचहाहट सुनकर अनायास ही तनाव और थकान दूर हो जाते हैं। शायद यही कारण है कि आप लोगों में तनाव से उत्पन्न बीमारियां जैसे उच्च रक्तचाप, मधुमेह, नींद न आना और अवसाद न के बराबर हैं, जबकि शहरी महानगरों की प्रदूषित वायु, तनाव और अनिद्रा से उत्पन्न हर समस्या से जूझते हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि आपके बीच रहकर हमें ग्रामीण जीवन को करीब से जानने का मौका मिला। आपने हमें भारतीय महान संस्कृति और परंपरा, रीति रिवाज, जिसका आधार स्तंभ पारस्परिक प्रेम है, उसे महसूस करवाया। शहरों में ये केवल आडंबर बनकर रह गया है। आत्मीयता की कमी खलती है। लोग भी ज्यादातर अपने ही कामों में व्यस्त रहते हैं। हमने अनुभव किया है कि यहाँ गांव में बच्चे शिक्षा के प्रति जागरूक हैं और शहर जाकर विद्योपार्जन कर गांव के हित में कार्य करना चाहते हैं। यहाँ पक्की सड़कें, बिजली, संगणक केंद्र, बड़ी बड़ी दुकानें, ट्यूशन केंद्र, सिनेमा घर आदि सब उपलब्ध हैं। सचमुच हमारे ग्राम तरक्की के पथ पर अग्रसर हैं। शहरी जीवन भी अपनी शान लिए अनूठा है। यहाँ उच्च शिक्षा और रोजगार के लिए कई विकल्प, स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए बड़े बड़े अस्पताल हैं आदि। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि शहरी प्रभाव के कारण गांव के संसाधनों में कई सकारात्मक परिवर्तन हुए हैं, परंतु आज भी हमारे गांव ही अपनी विशाल भारतीय सभ्यता और संस्कृति का आधार स्तंभ है। अपने विद्यालय की ओर से आप सबका आभार प्रकट कर धन्यवाद कहना चाहूँगा। नमस्ते।
इस रिकॉर्डिंग को दूसरी और अंतिम बार सुनने से पहले अब आपके पास 2 मिनट हैं।
प्यारे ग्रामवासियों, नमस्कार। मेरा नाम अंकित शर्मा है। मैं नवोदय विद्यालय का छात्र कप्तान हूँ। आज मैं यहाँ आप सबका आभार प्रकट करने के लिए उपस्थित हूँ। आपके परस्पर प्रेम और सहयोग से हमारा मन गदगद हुआ और हम ग्रामीण जीवन के प्रति जागरूक हुए। नैसर्गिक सौंदर्य में लिपटा गांव का शांत स्वच्छ वातावरण एवं सीधा सादा जीवन सचमुच आनंददायी है। हम शहरी कभी कभी सप्ताहांत शहर से दूर निकलकर ऐसा आनंद पाते हैं। यहाँ रोज सुबह की स्वच्छ हवा में व्यायाम, खेत की तरोताजा सब्जियों से बना शुद्ध सात्विक पौष्टिक एवं स्वादिष्ट भोजन शहरों में पाना दुर्लभ है, क्योंकि वहाँ की आपाधापी जीवन में खाने की फुर्सत ही कहाँ है। शहरी निरंतर भाग दौड़ में रहते हैं और गाँव में लोग रात जल्दी सोकर सुबह जल्दी उठते हैं। तालाबों और नहरों से बहती सुगंधित हवा, चिड़ियों की चहचहाहट सुनकर अनायास ही तनाव और थकान दूर हो जाते हैं। शायद यही कारण है कि आप लोगों में तनाव से उत्पन्न बीमारियां जैसे उच्च रक्तचाप, मधुमेह, नींद न आना और अवसाद न के बराबर हैं, जबकि शहरी महानगरों की प्रदूषित वायु, तनाव और अनिद्रा से उत्पन्न हर समस्या से जूझते हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि आपके बीच रहकर हमें ग्रामीण जीवन को करीब से जानने का मौका मिला। आपने हमें भारतीय महान संस्कृति और परंपरा, रीति रिवाज, जिसका आधार स्तंभ पारस्परिक प्रेम है, उसे महसूस करवाया। शहरों में ये केवल आडंबर बनकर रह गया है। आत्मीयता की कमी खलती है। लोग भी ज्यादातर अपने ही कामों में व्यस्त रहते हैं। हमने अनुभव किया है कि यहाँ गांव में बच्चे शिक्षा के प्रति जागरूक हैं और शहर जाकर विद्योपार्जन कर गांव के हित में कार्य करना चाहते हैं। यहाँ पक्की सड़कें, बिजली, संगणक केंद्र, बड़ी बड़ी दुकानें, ट्यूशन केंद्र, सिनेमा घर आदि सब उपलब्ध हैं। सचमुच हमारे ग्राम तरक्की के पथ पर अग्रसर हैं। शहरी जीवन भी अपनी शान लिए अनूठा है। यहाँ उच्च शिक्षा और रोजगार के लिए कई विकल्प, स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए बड़े बड़े अस्पताल हैं आदि। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि शहरी प्रभाव के कारण गाँव के संसाधनों में कई सकारात्मक परिवर्तन हुए हैं, परंतु आज भी हमारे गांव ही अपनी विशाल भारतीय सभ्यता और संस्कृति का आधार स्तंभ है। अपने विद्यालय की ओर से आप सबका आभार प्रकट कर धन्यवाद कहना चाहूंगा। नमस्ते।
इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अब आपके पास शेष समय है।